हरे कृष्णा। तो अभी मधुसूदन प्रभु आने में 5-7 मिनट का विलंब है, तो समय को उपयोग करने के लिए हम ये श्लोक का उच्चारण, शब्दार्थ, अनुवाद इत्यादि कर लेते हैं, ताकि प्रभु जी जब आएंगे तो तात्पर्य और आगे कथा इस पर चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किमात्मनाने न जहाति योऽन्ततः, किं रिक्तहारै स्वजनाख्यदस्युभिः, किं जायया संसृतिहेतुभूतया, मर्त्यस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः, किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः, किं रिक्तहारै स्वजनाख्यदस्युभिः, किं जायया संसृतिहेतुभूतया, मर्त्यस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः, किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः, किं रिक्तहारै स्वजनाख्यदस्युभिः, किं जायया संसृतिहेतुभूतया, मर्त्यस्य गेहै किमिहायुषो व्ययः। शब्दार्थ किम, क्या लाभ, आत्मनानेन इस शरीर से जहाति त्याग देता है यह जो शरीर अंततः जीवन के अंत में, किम क्या लाभ, रिक्तहार ही धन के लुटेरों से, स्वजनाख्यदस्युभिः जो स्वजनों के नाम से लुटेरे हैं, किम क्या लाभ, जायया पत्नी से, संस्मृति हेतु भूतया जो भौतिक दिशाओं की वृद्धि की स्रोत है, मर्तस्य मरणशील व्यक्ति का, गेह ही हर परिवार तथा जाति से, किम क्या लाभ, इह जिस घर में, आयुषः जीवन का, व्ययः मात्र विनाश। अनुवाद, उस शरीर से क्या लाभ जो अपने स्वामी को जीवन के अंत में स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। पत्नी से भी क्या लाभ है, वह भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ है, इनमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। तात्पर्य हजन करें सभा नारायण भक्ति राम स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। सामान्य व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंबी ही सब कुछ हैं, तो भला इन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों ले। किंतु प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना ही सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विष्णु की शरण ली, इसी प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की। इस प्रसंग में बलि महाराज बतलाते हैं कि यह शरीर भी जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा नहीं चलता। यद्यपि मैं आत्मा हूँ जो कि नित्य है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियम अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है तथा देहांतर प्राप्ति ही। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के नियम अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करे, क्योंकि यह समय का अपव्यय मात्र होगा और जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगा। हम समाज, मित्रता तथा प्रेम में अत्यधिक रुचि दिखलाते हैं, किंतु ये है क्या? मित्र तथा कुटुंबियों के वेश में लोग मोहग्रस्त जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को लूटते रहते हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है और वह उसे प्रिय होती है, लेकिन यह पत्नी है क्या? पत्नी स्त्री कहलाती है, जिसका अर्थ है भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है, उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती हैं। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है, त्यों ही उसकी भौतिक आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। वम सहस्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहुः अतो गृह क्षेत्र सुताप्तवित्तैः जनस्य मोहो यमः। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के मध्य आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा से नर तथा नारी के हृदय बंधते हैं और मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंबी तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। श्रीमद् भागवतम 5:5-8। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, अवांछित वस्तुओं की वृद्धि के लिए नहीं। वस्तुतः पत्नी अवांछित वस्तुओं को बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु, यदि वे भगवान की सेवा में उचित ढंग से नहीं लाई जाती तो वे तीन प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, अधिभौतिक तथा अधिदैविक के लिए स्थायी भौतिक अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती हैं। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं है। लोगों को जीवन उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तर जीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, किंतु इससे कोई बचता नहीं, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। किमात्मना नेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्तहारे स्वजनाख्य दस्युभिः किं जायया संस्कृति हेतु भूतया मर्त्यस्य गेहे किमुहायुषो व्ययः। एक अनुवाद हमारे भी दोहरा सकते हैं जब तक पहुंचने वाले हैं। सर्वज्ञ रामदर्व कह रहे हैं कि प्रभु जी के रास्ते में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने तो नहीं लगे। तो अनुवाद हमारे पीछे दोहराइए। उस शरीर से क्या लाभ? जो अपने स्वामी को जीवन के अंत में स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं, जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। पत्नी से भी क्या लाभ है? वह भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ है? इनमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है।
हरे कृष्णा। आपका सौभाग्य या दुर्भाग्य, मधु सुंदर प्रभु नहीं आ पाए। मैं तो उन्हीं को सुनने आया था, वैसे आने का मूड भी नहीं था, लेकिन तो यहाँ पे बलि महाराज जी को बंदी बना दिया गया और बलि महाराज प्रार्थना कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि बलि महाराज की स्थिति कितनी उन्नत है, ऐसी अवस्था में भी कितनी एम्बेरेसिंग सिचुएशन है उनके लिए। सब कुछ किया उन्होंने, धोखा भगवान ने दिया उनको और रस्सियों से बांध, वरुण पास से बांध लिया अपने पार्षदों के बीच में। कहाँ वो एकदम राजा थे और कहाँ उनकी हालत अभी स्थिति एक कैदी की तरफ हो गई। और ऐसी स्थिति में भी भगवान को धन्यवाद करना, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, ये बहुत बड़ी बात है। हम इसका इसके बारे में सोच भी नहीं सकते किस स्थिति में बलि महाराज हैं। और उसके ऊपर से इतना वैराग्य दिखाना कि वो कह रहे हैं कि आपने ये सब छीन भी लिया तो ठीक है, इस शरीर से भी क्या लाभ, वैसे भी जाना है, परिवार के सभी सदस्यों से भी क्या लाभ। हाँ मधुसूदन प्रभु की
सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया, महाराज से भी ज़्यादा। तो इसका आपने कर दिया प्रभु जी ने सब, उस शरीर से क्या लाभ जो अपने स्वामी को जीवन के अंत में सोता छोड़ देता है, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं, जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। पत्नी से भी क्या लाभ, मैं भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। परिवार, घर, देश, जाति से भी क्या लाभ है, इसमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। तो ये ब्रह्मचारी क्लास है। बहुत तगड़ा। तो वास्तव में जो है ये देह जो है, देह का अर्थ क्या है, देह शब्द का अर्थ होता है कवरिंग है, ये जो कवरिंग है। तो इससे और इससे जो देहज है, यानी कि देहज यानी इस कवरिंग से और कवरिंग जन्म लेती है, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या है अटैचमेंट रहता है हमारा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इससे आसक्ति है हमारी, और आसक्ति का क्या अर्थ है, आसक्ति शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सिक्त होता है कोई, सिक्त से शक्ति बनी है, शक्ति मतलब जैसे कोई किसी चीज में फंस जाता है बुरी तरीके से, तो उसे सिक्त कहते हैं, वो सिक्त हो गया, बहुत जैसे चींटी होती है, चींटी होती है ना गुड़ में फंस जाती है तो निकल नहीं सकती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बंधन तो उसे, यानी कि प्रकृष्ट रूप में बंधन होगा तो उसमें आ जोड़ दिया गया है, यानी आसक्ति। तो ये जो परिवार का बंधन है ये बहुत ही सबसे ज़्यादा क्या है ये तकड़ा बंधन है। और ये बंधन ऐसा है, कहीं जब बंधन होता है तो दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए कोई रस्सी होती है या बाल के समान भी होगा तो दिखेगा, लेकिन वो भी नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसी आसक्ति है। ये भक्त बोल रहे थे ये ऐसी आसक्ति है जो जा नहीं सकती है। आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती है। तो ये बहुत ही जो है तकड़ा बंधन है। तो ये जो है और ये दोनों तरफ से होता है, हाँ उसमें भी जो है सबसे ज्यादा स्त्री से और बच्चों से, हाँ। तो ये बंधन जो है ये दोनों तरफ से होता है, बाकी बंधन तो एक तरफ से होता है, जैसे कहीं हमें कभी बांध दिया गया है तो एक तरह से बंधन है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों तरह से बंधन है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, हाँ। तो ये परिवार बंधन जो है ये बहुत ही तगड़ा बंधन है, हाँ। तो ये जो है वास्तव में हृदय से होता है, और प्रहलाद महाराज बोलते हैं दृढ़ बंधन, ये बहुत दृढ़ है, इसको काटना जो है साधारण व्यक्ति का खेल नहीं है, बहुत ही दृढ़ बंधन है। तो इस तरीके से जो है व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं में आनंद ढूंढना चाहता है और करते करते वो स्त्री से विवाह करता है, वो सोचता है चलो ये इससे मुझे जो है आनंद प्राप्त होगा, लेकिन आनंद का जो स्रोत है वो जानता नहीं है आनंद का स्रोत क्या है। अगर इसे मालूम पड़ जाए आनंद का स्रोत क्या है, तो वो जो है इससे आसक्त नहीं होगा। तो जैसे जो है विवाह करता है, फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कथम प्रियायाम अनुकंपितायाम, तो ये जो है कई प्रकार के बंधन हो जाते हैं। एक तो प्रिया से, जो प्रिया है उससे बंधन हो जाएगा, तो वो जो है सोचता रहता है उसके बारे में जल्दी जल्दी से कब ऑफिस से छुट्टी होगी, कब जाऊंगा, और वो भी बोलती है कि हाँ मैं जो है अपने माता पिता को भाइयों को सबको छोड़ के आई हूँ, तो ये बेचारा सोचता है कि जब सर्व धर्मान परित्यज्य करिए तो मेरा भी कर्तव्य बनता है इसको पूरा आश्रय देना, इसके बारे में ख्याल करना, तो दिन भर उसका ख्याल करता रहता है। और फिर जो है उससे अगला प्रहलाद महाराज बता रहे हैं सूर्द, सूर्द बोल रहा कि साला बहनोई और क्या क्या होते हैं रिश्ते सारे भूल गए, तो कई प्रकार है और रिश्ते जो है वो बन जाते हैं। फिर जो है कलत्र कलाक्षणम मनोरक्त चित्तम, फिर जो है पत्नी आएगी तो क्या हुआ बच्चे भी आएंगे, तो फिर बच्चे से अटैचमेंट हो जाता है और उसकी मीठी बोली से तोतली बोली से तो कलत्र से। फिर जो है मनोज्ञ वस्तु, मनोज्ञ वस्तु होती हैं जो मतलब कई वस्तुएं जो है वो लाता है खरीद के लाता है, उससे भी बड़ा अटैचमेंट हो जाता है और उसमें संतुष्टि नहीं होती है। तो जैसे ही धन आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी और अच्छी वस्तुएं लाना चाहता है। जैसे मेरी भांजी है तो आजकल उसकी कमाई बड़ी अच्छी हो रही है, तो वो मोबाइल लाए 1,00,000 रुपये का, पहले 20-25,000 का था लेकिन संतुष्ट नहीं हुई, ऐसे ही टीवी भी 1,00,000 रुपये की सारा। तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये जितना भी ज़्यादा बढ़ाता जाएगा व्यक्ति उतना फिर छोड़ने में भी परेशानी होगी। इसलिए साधु जो हैं, कई जो साधु होते हैं वो अपने पास एक लोटा भी नहीं रखते हैं, आजकल तो रखते हैं बोतल भी रखते हैं लेकिन जो रियल साधु होता है वो अपने पास कुछ नहीं रखता है। तो जितना भी कम होगा ना, जितना बोझा कम होगा उतना उठाने में आसानी होगी, जितना बोझा ज़्यादा होगा उतनी प्रॉब्लम होगी। एक जो है कवि बोल रहे थे जाना है अकेले, जाना है अकेले पाल रखे हैं झमेले, अकेले जाना है लेकिन बहुत ज़्यादा झमेले पाल रखे हैं, इतना ज़्यादा जो है विस्तार कर लिया है हम लोगों ने। और आजकल तो जो है हम देखते हैं कि जेबें भरी रहती हैं, कई प्रकार के आइटम हैं, मोबाइल है और क्या क्या है, बहुत सी चीज़ें हमारे पास मोबाइल है एक छोटा सा, बहुत सी चीज़ें हैं, तो कई लोग जो है जेब भर के ले जाते हैं। तो यहीं से इतनी आ सकती है, फिर घर में आ सकती है, तो पूरी तरीके से सिक्त हो चुका है। तो ये है, और उसके बाद बता रहे हैं कि तो ये मनो की वस्तुएं हैं। तो ये चार प्रकार के जो ये बंधन है ये बहुत ही जो है सुदृढ़ है, दृढ़ बंधे दृढ़ बंधन। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि बहुत तगड़ा बंधन है। एक बार एक महाराज थे ऐसे शंकराचार्य के, कृष्ण बोधराचार्य महाराज, देखिए लोग ऐसे प्रवचन भी करते हैं लेकिन फिर भी आसक्त रहते हैं, इतनी समस्या है। यही जो है युधिष्ठिर महाराज ने एक बार पूछा था, युधिष्ठिर महाराज से किसी भक्त ने पूछा कि आपने जो है बताया कि सबसे बड़ा बंधन क्या है, जो है हैरानी वाली बात क्या है, आश्चर्य वाली बात क्या है कि हम देख रहे हैं कि सब लोग जा रहे हैं शरीर छोड़ के, फिर भी जो है हम लोग अपना जो है समझते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होगी, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, इससे बड़ा भी कोई आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ इससे बड़ा भी आश्चर्य है। वो क्या आश्चर्य है कि एक भक्त है और वो जानता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसमें वो प्रवचन भी करता है, लेकिन फिर भी उसकी आसक्ति नहीं छूटती है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हाँ, तो कृष्ण बोधाश्रय महाराज वो इसी पे लेक्चर देते थे, शरीर आत्मा पे लेक्चर दिया करते थे, हैं कि संसार से कैसे छूटना है, संसार का बंधन इतना भयानक है, सारा इसका लेक्चर ही हुआ करता। तो एक बार लेक्चर दे रहे थे, क्योंकि वो जवानी में जो है अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए थे, तो एक बार जो है उनकी पत्नी लेक्चर में आई, तो जब लेक्चर समाप्त हो गया तो सब लोग जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे, तो उन पत्नी ने भी प्रणाम किया, तो उन्होंने देख लिया, करे अरे तुम कब आई? तो उन्होंने बोला महाराज आप मुझे जानते हैं? कहने अरे क्या बात कर रही हो? फिर उन्होंने नाम बताया उसका, तुम्हें क्या हो गया? कह रहे नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हो गया? आप तभी तो लेक्चर दे रहे थे सारा कि जो है संसार को भूलना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही फंसे पड़े। जब ये उन्होंने सुना तो वहीं से वो मौन हो गए, उसके बाद एक शब्द ही नहीं बोले, 10 साल के लिए वो बद्रीनाथ चले गए, वहाँ के जंगलों में तपस्या करने लगे। 10 साल बाद आए वो, फिर जो है उन्होंने वास्तव में विरक्त हुए, वो वास्तव में विरक्त हुए। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। हाँ, हम लेक्चर तो बहुत देते हैं, हम खुद ही आ सकते हैं, खुद ही फंसे अपने। तो ये बहुत ही जो है दृढ़ बंधन है। हालांकि देखा जाए तो है क्या इस देह कवरिंग, जैसे ने बताया देह का अर्थ है कवरिंग, ये कवरिंग बनी कैसे है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से है। पृथ्वी कहाँ है? जो भी जो है हमारे माता पिता ग्रहण करते हैं तो उससे जो है ये खाल बनती है, पृथ्वी ये बनी है, उससे शरीर उत्पन्न होता है, तो ये खाल बनी है। इस पूरे शरीर में जो अटैचमेंट है वो इस खाल से ही है, है? पूरे शरीर में ये त्वग इंद्रिय है ना, ये त्वग इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, तो अटैचमेंट सब ये है और इसी के कारण ही हम संसार में हैं, लेकिन हम फिर भी रहना चाहते हैं, ये आसक्ति छूटती नहीं है। अगर ये ना होता तो आज कितने ब्रह्मचारी होते हैं, कितने भक्त होते हैं। ज्यादातर लोग भक्ति भी छोड़ देते हैं, हैं? किसी कारण? इस त्वग इंद्रियों को भोगने का, मात्र त्वग इंद्रियों। तो ये जो है बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं दृढ़ बंधन है। हाँ, तो जो अजीत आत्माएं हैं वो उसमें दोष नहीं देख पाते, अजीत आत्माएं जिसने जो है इस भौतिक जगत में ही आनंद लेने का सोच रखा है। तो प्रहलाद महाराज बोले अपस्त जहेदम बहुमन्य माना, अपस्त मतलब जनन इंद्रिय और जाहिर मतलब जीवा के सुख को ही बहुमन्य माना, इसको ही सुख मानना। हालांकि ये देखा जाए तो ये शरीर बहुत कितना दूषित है, कपड़े जो हैं हमारी अलमारी में महीनों महीनों पड़े रहेंगे, दूषित नहीं होंगे, एक महीने बाद हम आएंगे उसको पहन लेंगे, लेकिन जैसे ही पहनेंगे तो दूसरे दिन वो बदबू मार देगा। हाँ, कितना दूषित है शरीर। भोजन अच्छे से अच्छा सामग्री होगी, अच्छे से अच्छा केक होगा, जब तक वो देखा गया फ्रिज में रखा है अच्छा लगता है देखने में, हाँ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जैसे ही इसमें इस शरीर से संपर्क होता है तो सुंदर हो या मधु सुंदर हो कोई भी उसको ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा उसकी हालत, उसी समय वो खुद ही जो है नफरत करने लगेगा, उसी केक से वो खुद ही नफरत करने लगेगा तुरंत फ्लैश। क्या शरीर की हालत है, क्या है शरीर है, लेकिन बहुमन्य माना, इसी को बहु सुख मानता है। तो कितना बड़ा ज्ञान है। तो कथम ब्रजेत द्रंत मोहा, तो इस मोह को जो है वो तोड़ नहीं पाता है। मोह का मतलब अटैचमेंट, ये अटैचमेंट जो है वो द्रंत मोहा बहुत दुस्तर है। ये है कितनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन क्योंकि हमारे जो है संस्कार बहुत जन्मों से इतने हैवी हो चुके हैं कि हम पे इस पर प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। रोज सुनते भी हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है, असर नहीं हो पा रहा। लोगों को सुनाने में बड़ा मजा आता है, लोग सुन लेते हैं, हमारा लेक्चर हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन खुद फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है ये। तो इस तरीके से ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, प्रमत्त। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं प्रमत्त है। एक तो होता है मत्त, मत्त का मतलब होता है शराबी है, शराबी है तो क्या ऐसा पता नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, स्थान का नहीं पता है, कपड़े कैसे पहने हैं, कहाँ गिर गया है, उसे पता नहीं होता है। लेकिन प्रमत्त का मतलब क्या है, जो प्रकृष्ट रूपेण मत्त है, प्रकृष्ट रूपेण शराबी है, वो कौन है, वो हम लोग हैं। हैं हम लोग क्या हैं, हम लोग अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है जानते नहीं हैं, भजन भजन में कोई मन नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी हैं, तो ये प्रमत्त है। पूर्ण रूपेण जो है वो क्या है, मत्त हो गया है, शराबी हो गया है, नशे में है, नशेड़ी होता है ना, उसे पता नहीं होता है, वो कुछ भी समझता है अपने आप को। जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे बद्रीनाथ गए थे, तो वहाँ पर एक सरदार जी ने खूब दारू पी ली थी और बाहर आया, कहता है कौन है मेरे सामने, आ जाओ, कौन है कौन है, बहुत सबको बिल लगा रहा है, बताओ कौन आएगा उसके सामने क्या वो भूल गया, वो हालांकि पतला तो हुआ है, अगर धक्का दे दे कोई पहाड़ से गिर जाएगा लेकिन वो दिखा रहा है, मुझसे कहता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे बहुत शक्ति है, भूल गया है। तो ये हमारी हालत है, कुछ नहीं जानते हम, जानते हुए अज्ञानी बन चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कह रहे हैं, कुटुंब रामा, जो कुटुंब में जो है वो कुटुंब में ही आनंद लेता है, कुटुंब से आ सकता है। ऐसे लोगों की जो है कामनाएं जो है वो अशांत रहती हैं, व्यक्ति हमेशा अशांत रहेगा, चाहे कितना भी जो है वो कमा ले। हमारे जो है मार्केट में एक व्यक्ति होता था जिससे हम लोग जो है नीलम पुखराज वो का काम करते थे, तो वो जो है डायरेक्ट श्रीलंका से नीलम पुखराज मंगाता था, हम लोग तो उनसे दो दो तीन तीन पीस लेते थे, वो किलो किलो लाता था, इतना उसके पास पैसा था, कट्ठे कट्ठे पुड़िया पुड़िया देता था एक। तो हम देखते थे, मैं एक बार देखा कि वो बिल्कुल पागलों की तरह बातें करता था, फोन पे बातें करता था, अरे तू एक बार मेरी मार्केट में घुस के दिखा दिया, तब तेरे को दिखाता हूँ ये। तभी मैं सोचता था यार हम इनसे एक दो पुखराज लेते हैं, नीलम लेते हैं, तो हमें जो है ये इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो इतने बड़े बड़े पैकेट बेच रहा है, इसको हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो समझ लो कोई भी जो है यहाँ पर खुश नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है, कितना भी लोग कमा ले कोई प्रसन्न नहीं है, क्योंकि असत असत वस्तु जो है वो कैसे आनंद दे सकती है, असत वस्तु है और असत व्यक्ति है तो आनंद कैसे हो सकता है। आनंद कैसे प्राप्त हो जब सत वस्तु है, लेकिन सत को खोजना ही बड़ा मुश्किल है। आजकल सदगुरु सदगुरु बहुत हो गए हैं, सदगुरु हूं सदगुरु, लेकिन सत क्या वो जानते नहीं है। तो ये असत गुरु हैं, ये जो है हमारे लीडर हैं, जो लीडर ही ऐसे हैं, लीडर मतलब नेता, नेता का अर्थ क्या होता है, नेता शब्द जो है वो नेत्र से बना है, है तो इस शरीर को क्या कौन सहारा देता है, नेत्र देते हैं ना भाई, नेत्र ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक है, यहाँ चलो, ये वो कौन दिखाएगा, नेत्र दिखाते हैं। अब नेत्र ही आपका सहारा नहीं दे तो क्या होगा, नेत्र ही गलत रास्ता दिखा दें। एक ऐसे गाना भी है चिंगारी कोई भर के तो सावन उसे भेजा है, सावन जो आग लगाया तो उसे कौन भेजा है। ऐसे ही हुए हैं, वास्तव में ऐसे गुरु हुए हैं, सदगुरु सदगुरु बहुत सदगुरु हो गए हैं, लेकिन वो सत क्या जानते नहीं है तो कैसे सदगुरु हैं। तो इसलिए असत का सहारा ले रखा है तो सत को कैसे जानेंगे। तो ये जो है असत, तो भाई जो है सत कौन है, सत जो है, सत कौन है, भगवान और भगवान के भक्त। तो कुटुंब अभिरामा जो है, जब भक्त रामा हो जाएगा यानी कि भक्तों के बीच में आनंद लेने लगेगा, तब वो जो है वास्तव में प्रसन्न हो सकेगा, तब उसने क्या है वो सतमार्ग पकड़ा है। तो ये भक्त राम बनना पड़ेगा व्यक्ति को। जैसे कि जब राजा परीक्षित थे, तो राजा परीक्षित को कितना बड़ा भय था, कितना बड़ा भय था। हमारा तो भय बहुत कम है, हम लोग सोचते थे कोई धन ना छिन जाए, कोई ये ना, छोटी छोटी हमारे भय, लेकिन उनका भय क्या है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, और वो भी कोई तक्षक नसने वाला, कितना बड़ा भय है। लेकिन वो क्या भयभीत हुए, उन्होंने क्या किसका सहारा लिया, भक्ता अभिराम, भक्त, भक्त का सहारा लिया उन्होंने। तो मृत्यु भी आई लेकिन उनको कोई भय नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उन्हें सत्य का सहारा पकड़ रखा था। बड़ी से बड़ी समस्या भी जो है अगर होगी ना, अगर भक्तों के संपर्क में आ जाएंगे, भगवान के संपर्क आ जाएंगे, भगवान का आश्रय पकड़ लेंगे, तो वो समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी, वो समस्या समस्या नहीं लगेगी। अभी भी आप देख लीजिए, हालांकि हम लोग अभी बिल्कुल ही स्टार्टिंग की है हमने भक्ति की, अभी भक्ति भी नहीं है, हमारी साधना चल रही है गिरते पड़ते है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप बाहर की कितनी वस्तु हैं, लेकिन वे आकर्षित करती हैं। आज हमारे भक्तों में किसी की गोलगप्पे खाने की इच्छा होती है, है? अभी हम लोग जो है वहाँ पे हरिद्वार बद्रीनाथ गए, वहीं से आ रहे हैं, तो बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं लोग, इतने लोग भीड़ लगी होती है राफ्टिंग, अगर राफ्टिंग बोलते ना, राफ्टिंग के लिए बहुत लोग जा रहे हैं, और राफ्टिंग से निकलते हैं, पानी से निकलते हैं, पानी पूरी भी खाते हैं पानी पानी है तो जो है वो इसमें आनंद ले रहे हैं कि हाँ ये आनंद मिलेगा, वो आनंद मिलेगा। यहां से जाते इसलिए हैं, ये नहीं सोचते कि वहां ऋषिकेश है यानी कि भगवान का स्थान है, और गंगा जी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। वहां पर भी जाते हैं, जो जब भक्त अभिरामा होता है वो कहीं पर भी भगवान को देता है, जो कुटुंब अभिरामा होता है वो कहीं भी पिकनिक मना लेता है, पिकनिक मनाएगा, वन में भी जाते हैं, वृंदावन वन में भी जाएगा, वहां भी पिकनिक मना लेगा, तो कितना अंतर है। तो हमारी अभी स्टार्टिंग ही है, साधना ही है, लेकिन हम लोग देखते हैं ये सत दिख रहा है वास्तव में, क्यों, क्योंकि आपने सत का सहारा पकड़ लिया है, चाहे भले परिपक्व नहीं हुए, लेकिन जिससे आप जुड़ गए हैं वो तो परिपक्व है ना। तो जैसे ही आप उससे हम लोग जुड़ जाते हैं तो सच्चाई दिखने लगती है। हाँ, तो ये नेता हैं, वो वास्तव में हमारे नेत्र खोल देते हैं, तभी हम लोग बोलते हैं ओम अज्ञानति मेरा दस्य ज्ञान अंजन सला क्या, मैं अंधकार में था, अंधकार में क्या होता है, वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है यथारूप दिखाई देती है। तो ये जो है नेता जो है, ऐसे नेता का सहारा हम पकड़ते हैं तो वो क्या है, वस्तु दिखाई देती है, जैसे परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया शुद्ध गोस्वामी का आश्रय। तो फिर जो है, इसलिए काय मनोवाक्य करो वैष्णव संतोष, अपनी काया बॉडी से मन से और वाक्यों से वैष्णव को संतुष्ट करो। चेतन चरितमृत में कह रहे हैं कि वैष्णव को संतुष्ट करोगे तो जो है क्या होगा, इस असत का जो है मार्ग आपका बंद हो जाएगा और सत का मार्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हिरण्यकश्यप जो था, हिरण्यकश्यप को जो है, हिरण्यकश्यप कितना भयभीत था, उसने क्या पकड़ रखा था, असत का सहारा पकड़ रखा। कंस ने एक आकाशवाणी सुनी, घबरा गया। एक आकाशवाणी पूरी सुनी कि देवकी का आठवां पुत्र मारा, इतना प्रेम दिखा रहा था, जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि इसका पुत्र मुझे मारेगा तुरंत चेंज हो गया। तो असत का सहारा, अपनी बॉडी का सहारा पकड़ खाए, मैं हमेशा यहाँ रहूँ, मेरी सत्ता हमेशा बनी रहे। लेकिन जो है परीक्षित महाराज चित्रकेतु ऐसे जो है भक्त हैं वो क्या हैं, उन्होंने सत का सहारा पकड़ रखा है, इसलिए कुछ भय नहीं है। भजोरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद, तो अभय अभय के चरण पकड़ लिए, एक तो अभय वो है, एक अभय ये है। हमारे दो अभय हैं, तो इन अभय का अगर चरण पकड़ लिए तो क्या हो जाएगा, भय रहित हो जाता है, वो भी अभय हो जाता है। चित्रकेतु महाराज जो है वो जब जा रहे थे विमान से, तो उन्होंने क्या देखा, नीचे नीचे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि विमान से जा रहे थे ना, शिव जी और पार्वती छोटे छोटे दिख रहे थे। जब विमान से कोई जाता है ना तो सब चीज़ छोटी छोटी दिखाई देती है। शिला बाबा जी बोल रहे थे कि मैं जब विमान पे पहली बार बैठा तो देखा नीचे जो है वो मैच बॉक्स की तरह सब दिख रहा था, छोटे छोटे। एक बार एक सरार जी थे तो वो विमान में बैठे हुए थे, तो विमान में बैठे थे तो नीचे देखा उन्होंने, बोले देखो 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 नीचे देखो, अरे ऐसे लग रहा है चींटी जा रही है, बार बार बोल रहा था। एक माता जी परेशान हो गई, कह रहे क्या हो गया, कह रहे नीचे देखो ऐसा लग रहा है चींटी जा रही है। उन्हें देखा, बोले अरे वो चींटी तो हैं, वो चींटी हैं, अभी विमान उड़ानी है। अभी विमान ने उड़ानी नहीं, बड़ी उसे लग रहा है चींटी है। उन्हें बोला चींटी तो है वो। तो शिव जी पार्वती जो है वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और वो गए और हंसने लगे। उन्हें देखा भैया कि ये, हालांकि उनका ये विचार था कि कितने महान व्यक्ति हैं, एक स्त्री को अपने क्या बोलते हैं गोद में बैठाए हुए हैं और कथा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिव जी की कोई आसक्ति नहीं है, ये उनका विचार था। राधा गोविंद महाराज जैसे मतलब क्या, हालांकि उनका ये विचार था कि, लेकिन पार्वती जी ने थोड़ा उसका जो है अलग मतलब ले लिया। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया, चित्र के तू भयभीत नहीं, उनके चेहरे पर स्निग्ध तक नहीं आई, ठीक है क्या है पड़ता है। हालांकि वो चाहते तो उनको श्राप दे सकते थे पार्वती को, कोई बदला नहीं कुछ नहीं, और माता जी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है श्राप दे दिया, स्वीकार कर लिया है। तो जो है तो भक्त जो है वो किसी भी स्थिति में क्या है, भयभीत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अभय का चरण पकड़ रखे हैं। नारद मुनि जो है वो नारद मुनि की जो है माँ ने शरीर छोड़ दिया, माँ ने शरीर छोड़ा, सर्प ने उनको डस लिया, तो नारद मुनि क्या बोले थे कि जो है ये कृष्ण की कृपा है। चित्रकेतु ने बोला हाँ तत्यानुकंपा सुषम स्मान, हाँ ठीक है, सब में जो है वो कृष्ण की अनुकंपा देख रहे हैं, और नारद मुनि जो है चले गए और भजन करने लगे। शिला प्रभुपाद जी जो है, शिला प्रभुपाद जी को जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि तुम्हें जब पैसा मिले तो बुक्स प्रिंट करना, बोले तो वो जो सोच रहे थे कि इसका मतलब मुझे जो है बहुत बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, पैसा बहुत कमाना पड़ेगा, तब बुक्स प्रिंट होंगी। तो उन्होंने क्या करा, फैक्ट्री लगाई दवाइयों की, लेकिन क्या हुआ कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। शिला प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, बड़ा आदमी हमें, लेकिन फैक्ट्री में आग लग गई, तो शिला प्रभुपाद ने वो श्लोक याद किया क्या है, ऐसे हम गिणामी हरिश हरिश धनुष, तो जिसमें मैं कृपा करता हूँ उसका सारा धन छीन लेता हूँ। तो सिर्फ बाजी फिर क्या यह है, वो विरक्त हो गए जब, तो अपने आप धनी बन गए, पूर्णतया कृष्ण पे आश्रित हो गए, तो फिर क्या है, अपने आप धनी बन गए, अपने आप बुक्स छप गई। तो ये जो है ये है क्या है, सबका सहारा पकड़ना। एक बार कृष्ण अर्जुन जो है एक बार कृष्ण और अर्जुन जो है एक साहूकार के पास गए, तो साहूकार जो है दरवाजा बंद करके नोट गिन रहा था, उन्हें बहुत खटखटाया, वो खोला ही नहीं। तो कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे धन में वृद्धि हो। फिर एक निर्धन के पास गए, तो निर्धन ने जो है बहुत स्वागत किया है, उनकी गाय थी, उन्हें दूध पिलाया, बहुत जो है जितना आदर सत्कार करना कर लिया। तो कृष्ण ने बोला कि इसकी गाय मर जाए, अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई, यार ये क्या किया तुमने, उसको तो बहुत मैं दरवाजा भी नहीं खोल रहा था, तो उन्हें बोला इसका धन बढ़ जाए, उसको बोला गाय मर जाए, उल्टा कर रहा है। उसने बोला कि क्योंकि वो संसार में आसक्त है, इसलिए मैंने उसे बोला कि और आसक्ति तुम्हारी रहने में नहीं रहे, ठीक है, लेकिन ये जो है इसकी आसक्ति गाय में है, इसे गाय से बड़ा अटैच है, उतना अटैच मुझसे नहीं है, मुझे प्रेम करता है लेकिन ये गाय को ज़्यादा प्रेम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति, तो इसलिए अगर इसकी गाय भी मर जाएगी तो पूर्णतया मरे पर आश्रित हो जाएगा ये। तो कृष्ण जो है क्या करते हैं, धन छीनने का मतलब ये नहीं कि आपका धन छीन लेगा, कृष्ण जो है अपने से अटैच कर लेते हैं, जो भक्त वास्तव में बनना चाहते हैं तो कृष्ण से जो है कृष्ण क्या करते हैं वो अपने से अटैच कर लेते हैं। इसमें बहुत कुछ कहना था लेकिन मारेगा मेट्रो के कारण टाइम हो जाएगा, ऐसे बोलते जाएंगे थोड़ा खींचते जाएंगे थोड़ा सुन लो तो जो है लास्ट में ये कहना चाहते हैं हम कि इंद्रियों की जो है वास्तव में ये आदत है कि विषयों को पकड़ना है, इंद्रिय की जो है पहुँच भी इतनी है कि वो सिर्फ विषयों को पकड़ सकती है, आँख की आँख नाक कान मुंह जीवा जो भी है और त्वग इंद्रिय है, इनकी जो है पहुँच सीमित है, सीमित है, वो क्या करेगी भोग को ही पकड़ सकती है। तो कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को वो नहीं पकड़ सकती है इंद्रियां, लेकिन जब जो है भक्तों से जो है वो अटैच होंगे तो ये जो है ये इंद्रियां शुद्ध होंगी और फिर जो है ये उस ओर कृष्ण की ओर जाएंगे। हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ। काम भोग से विरत होना पड़ेगा, काम भोग से विरत होने, काम का मतलब क्या है, काम का मतलब होता है इंद्रिय तृप्ति की जो वस्तुएं हैं, और भोग का मतलब होता है फिर उसमें जो है इंद्रियों विषयों से संयोग, तो ये काम भोग है, हैं। और जब जो है हम लोग अगर कृष्ण का सहारा पकड़ते हैं तो क्या पढ़ना पड़ेगा, तपस्या, तपस्या का मतलब होता है बलात् इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना बलपूर्वक, तो तपस्या है, जैसे कि एक मान लीजिए गुलाब जामुन होता है, बनाते हैं उसको, तो शुरू शुरू में क्या करते हैं उसको, उसकी वो बनाते हैं क्या बोलते हैं, हाँ पेड़ा बनाते हैं उसको, और फिर उसको क्या करते हैं अग्नि में डालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं, तो क्या होती है बहुत तपती है, वो तपती है ना, लेकिन जैसे ही उसको निकाल के फिर क्या करते हैं सिरे में डाल देते हैं, फिर वो आनंद स्वीट देती है, स्वीट देगी। तो पहले पहले तपस्या जो है बड़ी भयानक लगती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर इससे क्या करेगा स्वीटनेस आएगा। हाँ आप देखो अभी हमारे कई भक्त लोग हैं, मंगल आरती में उठने में कोई परेशानी होती है, बल्कि जैसे कई बार अलार्म में बजता नहीं है, लेट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, अरे ये क्या यार अलार्म बजानी, कई लोग मोबाइल ही पढ़ देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं क्या। तो वो जो है अब वो तपस्या जो है वो तपस्या नहीं लगती है, वो क्या आ जाती है, स्पॉन्टेनियस आ जाती है। तो ये जो है क्या है, सतमार्ग। जब सतमार्ग पर हम जाते हैं तो ये जो है आसक्ति अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे भक्ति करेंगे, जैसे हमारी भक्ति के हैं तीव्र ना भक्ति योगन बताया गया, अगर तीव्र भक्ति नहीं भी होती है, अगर हमारी भक्ति सुस्त भी है, धीरे धीरे भी है, फिर भी जो है अगर हम देखेंगे तो बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। भक्तों को कई बार पता नहीं लगता, क्योंकि भक्तों के बीच में है ना वो और आगे भक्तों को देखते हैं, अरे वो तो बहुत आगे चला गया है, वो इतने इतनी माला करता आएगा, तो उसे पता नहीं लगता कि वो कितना आगे आ चुका है। अगर हम लोग देखें पीछे के, हम लोग देखा जाए तो पीछे की कितनी वस्तुएं हम लोग छोड़ चुके हैं, कितने भक्त लोग छोड़ चुके हैं, कितनी वस्तुएं छोड़ चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसे भक्तों को क्या है, प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। ऐसे हरे कृष्ण और दोबारा आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं मेट्रो में बैठा था और पढ़ते पढ़ते आगे पहुँच गया वो पता नहीं लगा कहाँ पर, बस देखा अरे ये तो बहुत आगे आ गया है, फिर वापस गया, तो इसलिए आने जाने में बहुत समय खराब हो गया और आपको अभी समय मैंने खराब कर दिया। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण।